Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन शास्त्र उसी को ही विधान कर रही है, अग्निसोमियम पशुमालभेता, अग्निसोमीय यज्ञ करने वाले को पशु की बलि देनी ही चाहिए, विधान कर रही है। तब तो फिर उसे पूर्व पक्ष ने कहा था कि मां हिंसा सर्वाभूतानि, किसी भी प्राणी की हत्या मत करो, ये भी तो वेद ने ही कहा है। तो कहा है कि ये सामान्य नियम विधि और विशेष विधि। रागतः हर पशु को मारते खाते में प्रवृत्त हुआ हुआ सभी जीवों को, मनुष्यों को उन राग से निवृत्त कराने के लिए वो वाक्य है मां हिंसा सर्वाभूतानि, वो सामान्य वाक्य है। लेकिन यदि किसी हालत से तुमको खाना ही है तो तुम यज्ञ करो, अग्निसोमीय। अब अग्निसोमीय यज्ञ के बिना पशु का आलंबन न करो, ये वाक्य होने से तो हर व्यक्ति हर समय अग्निसोमीय तो करेगा नहीं, तो अपने आप रागतः हिंसा में प्रवृत्त हुआ हुआ जो मनुष्य है वो उसकी प्रवृत्ति रुक गई, क्योंकि अग्निसोमीय तो कोई कर ही नहीं सकता है इस लोक में, तो स्वतः ही बाधित हो गए। अब कोई कर सकता है तो एक आधा व्यक्ति कर सकेगा, वो भी एक ही बार करेगा जीवन में, बार बार तो कर नहीं पाएगा। अग्निसोमीय यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, तो यदि ये विधान न होता मां हिंसा सर्वाभूतानि, वो तो दिन में हजारों की हत्या करता। मां हिंसा सर्वाभूतानि ये वाक्य ने क्या किया कि उसकी जो स्वाभाविक हिंसा में प्रवृत्त हुई थी वो प्रतिबंधित हो गई, रुक गया। अब स्वर्ग के निमित्त से ज्योतिष्टोम यज्ञ से एक आधा पशु की हत्या करता है तो रागता प्रवृत्त होकर हजारों की हत्या के करने की अपेक्षा तो विधि से एक हत्या करने में अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि वेदांत दृष्टि से तो उसको भी हटा दिया गया है, तब वेद ने ही निर्धारित किया हुआ होने के कारण वो अधर्म नहीं है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति वेद ने ही कहा है। तो धर्म क्या है अधर्म क्या है वो हमारी बुद्धि निर्धारित नहीं कर सकती है, तो इसलिए शास्त्र ही उसका निर्धारण करती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित, हे अर्जुन तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है, ते क्या कर्तव्य है, इसकी व्यवस्था शास्त्र ने किया है। शास्त्र के आधार पर तुम कर्म करो, शास्त्र जो कहता है वो करो। यदि शास्त्र नहीं कहता है उस बात को मैं भी यदि कह रहा हूं तो कोई जरूरत नहीं मेरे वाक्य को मानने की। हाँ, शास्त्र निषिद्ध बात यदि मैं कह रहा हूं तो मानने की जरूरत नहीं है। तो ये मंत्र साध्य और साधन दोनों को वर्णन करने का मंत्र है। आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि, तुम उन्हीं कर्म को करो जिन कर्मों से तुम्हारे गुण सद्गुण की अभिवृद्धि होती है, तो उसी कर्म को करो जिस कर्म से तुम्हारा चित्त शुद्ध होता हो। गुणान्वित का मतलब यही होता है, तुम वही कर्म करो जिन कर्म से तुम्हारा चित्त शुद्ध होवे, तुम वही कर्म करो जिस कर्म से तुम्हारे परमात्मा प्रसन्न होवे, तुम वही कर्म करो जिन कर्मों के द्वारा तुम बंधन में पड़ना न पड़े, यही गुणान्वित कर्म है। तुम वही कर्म करो जिन कर्मों से कभी भी दुख और शोक और मोह की प्राप्ति न हो, कभी भी दुख की प्राप्ति न हो वो कर्म करो। तब तो बोले महाराज खूब धन कमाने का तो सुख का कारण है, कभी दुख का कारण तो होगा नहीं, इसलिए धन कमाने के लिए तो जैसे भी हो कर्म कर लेना चाहिए। तो यदि तुम्हारे कमाया हुआ धन तुम्हें कभी भी दुख नहीं देता है तब तो ठीक है, जब तुम्हारे कमाए हुए धन को धन पर सरकार की दृष्टि पड़ती है और इनकम टैक्स आ जाता है तो क्या उस समय दुख देगा कि नहीं, कौन दुख दे रहा है? सरकार दे रहा है कि तुम्हारे कमाए हुए अंधाधुंध कमाए हुए पैसा दे रहा है? कानून के विपरीत कमाए हुआ पैसा तुमको दुख दे रहा है कि सरकार दे रहा है? मुझे लगता है सरकार तो देगा नहीं। तुम डरोगे और चिंतित होगे तभी ना कि तुम कुछ कानून विपरीत तुम्हारे पास लेखा झुका होगा, अन्यथा जब कानून के सम्मत से तुमने कमाई हो तो अच्छा जितना कमाना है कमाओ, तुमको डर होने की दुखी होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। है शास्त्र क्या कह, कानून क्या कह रहा है? तुम नियम अनुसार जो कमाते हो उसका टैक्स पेमेंट करो, जितना कमाते हो उसके अनुसार टैक्स पेमेंट करो, जितना कमाते हो कमाओ, करोड़ कमाओ, अरब कमाओ, खरब कमाओ, टैक्स पेमेंट करो। तो नियम अनुसार टैक्स पेमेंट करते हैं तो फिर वो व्यक्ति डरने की जरूरत पड़ती है। तो डरता कौन है? धन कमाता है लेकिन नियम अनुसार नहीं कमाता, इसलिए वही व्यक्ति डरता है। आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् विनियोजयद् यः, जो मुमुक्षु सारे कर्म को उस भाव अर्थात परमात्मा को अर्पण कर देता है। भावाश्च अत्यंत विशेषान्वित विनियोजद ईश्वरे समर्पयेत इति। भाव शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, उस परमात्मा को वो सारा का सारा कर्म सर्वान् विनियोज्य विनियोजे, विनियोग बोलते हैं ना हम लोग, तो विनियोग का अर्थ होता है कि उनको अर्पण करने के लिए जो कर्म जिस इष्ट देवता को लक्ष्य रखकर हम कर रहे हैं वो कर्म उसको प्राप्त होवे इसके लिए विनियोग किया जाता है। बाबांश्च सर्वान् विनियोज यद्यः, तब उसका प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? कर्म करके परमात्मा को अर्पण कर देंगे तो उससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? तेषाम् अभावे कृतकर्मणा सह, परमात्मा को अर्पण किया हुआ कर्म जीवात्मा के लिए बंधन का कारण नहीं होगा। शास्त्र सम्मत कर्म भी परमात्मा को अर्पण नहीं किया है तो वो बंधन का कारण होगा, शास्त्र सम्मत कर्म परमात्मा को अर्पण किया हुआ है तो वो बंधन का कारण नहीं होगा। तो परमात्मा को अर्पण करने वाला कर्म करने वाला व्यक्ति काम्य और निषिद्ध तो करेगा ही नहीं। काम्य तो अपने लिए किया जाता है, उस कर्म को काम्य कहते हैं। शास्त्र ने जो निषिद्ध किया है उस कर्म को निषिद्ध कर्म कहते हैं। शास्त्र ने मेरे लिए ही निषिद्ध किया हुआ है तो वो कर्म परमात्मा के लिए कैसे स्वीकार्य होगा? ये बुद्धि तो उसको होनी ही चाहिए। जिस कर्म को मेरे लिए ही निषेध किया हुआ है तो वह कर्म परमात्मा को कैसे स्वीकार्य होगा? यदि मैं अर्पण भी करना चाहूं उस कर्म को करके तो परमात्मा को स्वीकार होवे तब ना, उसको तो होगा नहीं, तो फिर मैं क्यों कर्म करूं? वो तो परमात्मा को अर्पण करने के लिए किया होने करने वाला जो व्यक्ति कर्म करता वो निषिद्ध कर्म तो करेगा नहीं। अब काम्य कर्म इसलिए नहीं करेगा कि क्योंकि उस कर्म का मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे परमात्मा को अर्पण करना है, तो काम्य कर्म नहीं करेगा वो। और शास्त्र सम्मत नित्य और नैमित्तिक कर्म जो है वो परमात्मा को भी स्वीकार्य है, इसलिए वही कर्म करके उसको अर्पण कर देगा। कहीं बार समाज में ऐसी भ्रांति होती है, कुछ भी कर लो परमात्मा को अर्पण कर लो, खत्म हो गई बस छुट्टी। कुछ भी कर लो और परमात्मा को अर्पण कर लो। तो आपको मैं एक रहस्य बता दूं, ये जीवन में घटी हुई हमारे सामने। हम उल्लासनगर में कथा कर रहे थे बहुत पहले, एक माताजी आई, उन्होंने कहा कि महाराज मेरा पति पैसा बहुत कमाता है, लेकिन मैं जब किसी को दान करने के लिए पैसा मांगती हूं तो एक कौड़ी नहीं देता है, बाकी पैसे फिर घर के खर्च के लिए देता है। सब्जी खरीदनी है तो दे देगा, बर्तन खरीदनी हो दे देगा, कपड़ा खरीदनी हो दे देगा, घर खर्च के लिए वो देता है। और जब मैं कहती हूं कि नहीं महात्मा आए हैं उनको कुछ दक्षिणा देनी है, अन्न क्षेत्र चला रहे हैं नेपाल में, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कहते हैं उनको कुछ विशेष सहयोग करना चाहिए तो कुछ और पैसा दे दो, उन महात्मा को थोड़ा दे दे, तो फिर एक पैसा वो देता नहीं है। अब क्या करूं महाराज, ईमानदारी से खर्च के लिए देता है तो वही खर्च से, यदि हम खर्च न करके देते हैं तो हमको मन में लगता है कि वो पाप लगेगा, क्योंकि वो घर खर्च के लिए दे रहा है और हम घर खर्च में प्रयोग न करके दान करने लग जाएंगे तो मन में लगता है कि पाप होगा, उसको हम उसके इच्छा के विपरीत, उसकी कमाई हुई संपत्ति उसकी इच्छा के विपरीत हम खर्च कर देते हैं तो हमको लगता है कि डर लगता है। तो कभी कभी मैं वो जब सोया हुआ होता है उसके जेब में से निकाल लेती हूं। ईमानदारी से कहा है, आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं करते हो हम नहीं जानते हैं, निकाल लेती हूं ईमानदारी से, क्योंकि जेब में बहुत पैसे पड़े रहते हैं, मैं निकाल लेती हूं लाकर फिर दान कर देती हूं महात्माओं को। अब मेरे मन में बार बार ये बात सताती रहती है कि उसके जानकारी के बिना उसके जेब से मैं पैसा जो निकाल रही हूं वो पाप लगेगा कि नहीं, क्योंकि वो मैं अपने लिए तो निकाल नहीं रही हूं, तो दान के लिए निकाल रही हूं, और निकाल के वो पूरा का पूरा दान कर देती हूं तो मुझे पाप लगेगा कि नहीं, और जो दान कर रही हूं वो पुण्य मिलेगा कि नहीं, उसके सामने बड़ी समस्या है। पता नहीं आप क्या परिभाषा करोगे, हमको पता नहीं है। मुझे लगता है ये पॉइंट वाले सभी, उनके पास जेब है, मुझे लगता है वो सब कहेंगे कि पाप लगेगा, क्योंकि उनको अपनी पैसे बचानी है, इसीलिए वो जरूर कहेंगे कि पाप लगेगा। हम भी तुम्हारे बात पर सहमत हैं, भले हम पॉइंट न पहने हो, धोती पहने हो, हम भी तुम्हारे जाति के हैं। ये बात अलग है कि शादी नहीं किया इसलिए हमको वो समस्या नहीं है कि पैसा कोई निकाल लेगा, लेकिन हम तुम्हारे बात पर सहमत हैं। धर्मशास्त्र यही कहता है कि क्योंकि वह निषिद्ध कर्म है, चोरी ये निषिद्ध कर्म है, तो तुमने जो निषिद्ध कर्म किया उसका प्रत्यवाय तो संचित होगा ही होगा। अब रहे कि बात पूरा दान कर दिया, अपने लिए तो रखा ही नहीं है, तो फिर कैसे पाप होगा? तो ठीक है, जो दान कर दिया उसका भी पुण्य होगा, तो तुम्हें फायदा क्या हुआ है? 50% पाप हुआ, 50% पुण्य हुआ, फायदा क्या हुआ तुम्हें? दोनों बराबर हो गए कि नहीं? पाप और पुण्य दोनों बराबर पैदा करना ठीक है कि पाप और पुण्य दुईटे दोनों ही न हो ये ठीक है? बोलो है? तब फिर इस प्रकार से चोरी कर करके दान करने की जरूरत क्या है? दान करके पुण्य बढ़ेगा तो पाप करके, माने चोरी करके पाप भी तो बढ़ेगा, इस बात को क्यों नहीं सोच रही हो तुम? तो उसने कहा कि फिर तो फिर दान कैसे करें महाराज? बोले दान करने का ही दुराग्रह क्यों रखती हो? यदि दान ही करनी है तो तुम्हें जो खर्च के लिए दे रहा है उसमें से तुम अपने खर्च को कटौती करके दान करो, उसमें तो प्रत्यवाय नहीं ना है। तुम्हें आखिरी तुम्हें अपने खर्च के लिए तो वो दे ही रहा है ना, ले साड़ी खरीदने के लिए पैसा, तो यदि उससे कहो एक साड़ी 10,000 में आती है, मुझे वो साड़ी चाहिए, तो वो 10,000 तो दे रहा है कि नहीं? तुम खुद अपने मुख से कह रही हो, तो उससे 10,000 लो तो 5,000 का साड़ी खरीद लो, और क्या साड़ी तो खरीदनी है, तो 10,000 दिया तो 10,000 की साड़ी खरीदना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा उपयोग का वस्तु है, तुम उसको 5,000 की साड़ी खरीद लो, 8,000 की खरीद लो, 2000 तो बच गए, उसका दान करो, उधर पाप नहीं लगेगा, इधर पुण्य हो जाएगा, वो तो तुम्हें फायदा होगा। तो यही है कर्म करने की विधि रीति, ये सबको समझना चाहिए। परंतु आजकल क्या हुआ, चोरी करो फिर उसके में से प्रतिशत दान करो, ईमानदारी के कमाई में से 10% दान करने के लिए कहा है, चोरी के 10% दान करने के लिए नहीं कहा है धर्मशास्त्र ने। आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि वावाच सर्वान् विनियोजयद यः। सब कुछ उसको अर्पण कर दोगे तो क्या होगा, बोले तेषाम अभावे। कर्म का दो पक्ष हैं, पुण्य और पाप, ये दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि कर्म पूरे परमात्मा को अर्पण कर दिया तो दोनों ही नहीं रहेंगे। तब क्या होगा, कृत कर्म नाशः, तुम्हारा वो किया हुआ कर्म वो कर्मनाश हो जाएगा। काशी में कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी में जो जूस जल का स्पर्श करते हो तो सब कर्म का नाश हो जाता है। तो सब डरते हैं, उसको छूने में ही डरते हैं, उस जल को। अब कहा गया वो डरते इसलिए है कि हमारा पुण्य नाश ना हो जाए। तेषाम अभावे कृतकर्मणा स कर्मक्षय याति स तत्त्वतो अन्यः। कर्मक्षय हो जाने के बाद जो चित्त शुद्ध निर्मल होगा उसमें जो स्वरूप की उपलब्धि होगी वह तत्त्वतः अन्य, वो वास्तव में वो भिन्न तत्व ही होगा। कर्म और कर्म, अकर्म विकर्म, पुण्य और पाप, कर्ता और भोक्ता, इन सब से वह भिन्न होगा, उस तत्व का अपरोक्ष हो जाएगा। अब इसके लिए गीता में तो बहुत कुछ दिया है शंकराचार्य जी ने, इस मंत्र के भाष्य में गीता के अनेक सूत्र मन श्लोकों का उदाहरण दिया है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। इसी कर्म के आशय पर भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में उपदेश दिया, इसी मंत्र के आशय पर। आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि भावाः च सर्वान् विनियोजयद्यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्ततो अन्यः। इस श्रुति के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म परित्याग करने का उपदेश दिया है। ऐसा जब हम कर्म का परित्याग करेंगे तो उसका फायदा क्या हुआ, तो भगवान ने आगे कहा है, शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः। अर्जुन, इस प्रकार के तुम कर्म का परित्याग कर दोगे तो तुम उन कर्म और से उत्पन्न होने वाले शुभ और अशुभ दोनों से तुम मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमां भसात्। परमात्मा को लक्ष्य में रखकर कर्म यदि तुम कर्म करते हो तो ये अर्जुन उस कर्म जन्य जो हो ज्ञात अज्ञात पाप पुण्य से तुम लिपायमान नहीं होगे। जैसे पानी से ही उत्पन्न हुआ हुआ कमल पानी से असंग रहता है, उसी तरह अविद्या से प्रयुक्त होकर किया हुआ जो कर्म है वही कर्म तुम ईश्वर को अर्पण कर दोगे तो उसके कारण रूप अविद्या से भी तुम असंग हो जाओगे, लिपायमान नहीं होगे। गीता के श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म ये तीन प्रकार से होते हैं ना, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, केवल शरीर से होने वाला कर्म, शरीर और मन से युक्त होकर होने वाला कर्म, शरीर मन और बुद्धि से युक्त होकर होने वाला कर्म, शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय से युक्त होकर होने वाला कर्म। वास्तव में कर्म के लिए इन चारों का एकीकरण होना बहुत जरूरी है। बुद्धि है, मन है, लेकिन तत्कर्म करने का इंद्रिय नहीं है तो कर्म नहीं हो पाएगा। चलने की इच्छा है और पांव नहीं है तो कर्म नहीं हो पाएगा। करने की इच्छा है, हाथ नहीं है तो कर्म नहीं हो पाएगा। बोलने की इच्छा है, वाणी नहीं है तो कर्म नहीं हो पाएगा। तो इनके चारों के योग से कर्म होता है। तो योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म छोड़ते नहीं है, कर्म करते हैं इन्हीं चार चीज से। लेकिन वो सारा का सारा कर्म संगम त्यक्त्वा, कर्माशक्ति और फलाशक्ति रहित होकर किया हुआ होने के कारण, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ होने के कारण, आत्मशुद्धये, तो वह कर्म उन योगियों के आत्मशुद्धि का कारण बन जाता है। आत्मशुद्धि माने चित्त शुद्धि का कारण बन जाता है। तो कर्मक्षय विशुद्ध सत्तो याति तत्त्वतो अन्यस्त तत्त्वभ्यः प्रकृति भूतेभ्यो अन्य, या तत्त्वतः अन्य का अर्थ किया, तत्त्व माने प्रकृति से लेकर स्थूल महाभूत पर्यंत जितने भी भौतिक तत्व हैं उन सब से वह भिन्न हो जाता है। तत्व तो अन्य तो वही परमात्मा है। तत्व का अर्थ प्रकृति, प्रकृति शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है। तत्वतः प्रकृतिभ्य भूतेभ्य अन्यो अविद्या तत्कार्य विनिर्मुक्तो भवति है। तत्व माने प्रकृति जन्य अविद्या, अविद्या का कार्य, इस सभी को तत्व का, या ब्रह्म को ब्रह्म तत्व पद से ब्रह्म या परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो तत्व तो अन्य का उनसे अलग हो जाएगा। परमात्मा तो अलग ही है। तो उस अविद्या अविद्या के कार्य से भिन्न जो है, विनिर्मुक्त चिदात्मानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मत्वेन अवगच्छन्ति इत्यर्थ, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ इस तरह किया। उक्तस्य अर्थस्य द्रढिम उत्तरे मंत्राः प्रस्तूयन्ते कथम नाम विषयान्धाः ब्रह्म जानीयुः इति। जब रहस्य यह है, ब्रह्म को अर्थात परमात्मा को जानने के लिए ये प्रक्रिया है, और जो इस प्रक्रिया को नहीं अपनाता है वह फिर उस परमात्मा को नहीं जान सकता। कर्म करके चित्त शुद्धि के लिए कर्म करके किया हुआ कर्म परमात्मा को अर्पण करता है, तो चित्त शुद्धि का परिणाम यह हुआ है कि तत्व माने अविद्या अविद्या के कार्यों से वह अलग होकर वो जो अलग तत्व ब्रह्म है उसके साथ उसको साक्षात्कार हो जाता है। परंतु जो इस प्रकार के कर्म नहीं करते वो अज्ञानी जीव, उनकी अवस्था क्या होती है? आदि स संयोग निमित्त हेतु परत्रिकाल अकलोपि दृष्टः तम विश्वरूपं भवभूतमीड्यम् ये देवं स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम्। आदि ही आदि कारणम सर्वस्य स संयोग निमित्त हेतु परः, शरीर संयोग निमित्त अविद्यानाम हेतु आदि ही। तो अज्ञानी लोग तो जो इस तरह चित्त शुद्ध नहीं कर सकते हैं, वो अज्ञानी तो शरीर संयोग निमित्तानाम जो आदि है, अविद्या है, उस अविद्या के वश में हो जाते हैं, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस मंत्र की व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति।